पृष्ठ संख्या 212। पूंजीवादी समाज में केवल वंचना की मायावी संस्कृति ही सक्रिय नहीं होती, उसके समानांतर एक और संस्कृति विकसित होती है जो वंचना की संस्कृति का विरोध करती है। वह मुक्तिधर्मी संस्कृति होती है। पूंजीवादी समाज में कविता ना तो संस्कृति के उद्योग का हिस्सा बनकर जिंदा रह सकती है और न माया की संस्कृति से होड़ करती हुई। वह मुक्तिधर्मी संस्कृति से जुड़कर ही अब तक जीवित रही है और आगे भी रहेगी। कविता जब मुक्तिधर्मी संस्कृति का माध्यम होती है, तभी वह सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप करने वाली शक्ति बनती है, अन्यथा वह या तो बुद्धिजीवी समुदाय के मनोरंजन का एक साधन होती है या संस्कृत के संग्रहालय की वस्तु। इन दोनों स्थितियों में व्यापक समाज के लिए उसका होना ना होना बराबर है। अब तक के इतिहास में वही कविता समाज के लिए जरूरी साबित हुई है जो अपने समय और समाज के हाशिए पर रहने वाले पराधीन तथा पीड़ित जन समुदाय की यातना के अनुभवों की आवाज़ बनी है और उसके संघर्ष की शक्ति भी। आज हम जिस संसार में जीने मरने के लिए मजबूर हैं, उस पर शासन करने वाली व्यवस्था असामाजिक मनुष्य और अमानवीय समाज पैदा करती है, इसलिए उसके खिलाफ खड़ा होना कविता का धर्म है, क्योंकि वह मनुष्यता की मातृभाषा है। यही कविता की जिंदगी और जरूरत की बुनियादी शर्त है। आजकल हिंदी के अधिकांश कवि और कविता प्रेमी यह अनुभव कर रहे हैं कि कविता संकट में है। इस बीच कविता पर संकट के बारे में जितने लेख लिखे गए हैं, उससे अधिक कविताएं लिखी गई हैं। उन कविताओं में प्रायः कविता के सामने खड़े उन खतरों की ओर संकेत है जो भाषा को भ्रष्ट करने से लेकर सामाजिक संवेदनशीलता को नष्ट करने तक फैले हुए हैं। लेकिन ऐसी अधिकांश कविताओं में कहीं आत्मालोचन की कोशिश नहीं है। उनमें यह चेतना भी नहीं है कि आज की हिंदी कविता अपनी दुर्दशा के लिए खुद कितनी जिम्मेदार है। लेकिन रघुवीर सहाय ऐसे कवि हैं जो पृष्ठ संख्या 213 समकालीन हिंदी कविता के संकटों के बारे में सजग हैं और उसकी आंतरिक कमजोरियों के बारे में सावधान भी। उनकी अनेक कविताओं में आज के कवि कर्म की कठिनाइयों और कविता के अपधर्म की उन स्थितियों की पहचान है जिनके कारण कविता दुर्बल और दयनीय होती जा रही है। वह कविता के आंतरिक संकटों की ओर संकेत करते हुए कवियों को आत्मविश्लेषण के लिए प्रेरित करते हैं और पाठकों को सावधान। आज की हिंदी कविता में बौद्धिक एकाकीपन बहुत है, लेकिन उसके वस्तुगत आधार और प्रतिरूप की चिंता बहुत कम। लगता है कि कवि की आत्मा का ना कोई मित्र है न शत्रु। उसे ना किसी की मर्माहत कातर पुकार सुनाई देती है और ना किसी की दहशत पैदा करने वाली दहाड़। इससे कविता संवाद के बदले स्वगत कथन बनती जा रही है। इस स्थिति को देखकर रघुवीर सहाय एक कविता में पूछते हैं, हर बार घूम फिर कर अपने एकाकीपन की व्याख्या करना क्या कविता है? जो कविता केवल कवि के एकाकीपन की व्याख्या करने में लगी हो, उसमें अगर पाठकों की कोई दिलचस्पी ना हो तो क्या आश्चर्य। युगों से कविता समाज को इसलिए प्रिय रही है कि वह श्रोताओं पाठकों को भावात्मक वैचारिक शक्ति और नैतिक बल देती रही है। लेकिन कविता में यह क्षमता तभी आती है जब वह जिंदगी की वास्तविकताओं से जुड़ी हो, जिनमें सुंदरता से अधिक कुरूपता, गरीबी और गुलामी की सच्चाइयाँ होती हैं। जो कवि दृष्टि ऐसी सच्चाइयों की खबर लेने और देने से बचती है, वह चाहे जो रचे, अंततः पाठक को निराश और निर्बल बनाती है। आजकल हिंदी में ऐसी कविताएं खूब लिखी जा रही हैं। रघुवीर सहाय ने ऐसी कविताओं के बारे में ठीक ही सवाल किया है। मैं पूछ रहा हूँ इसलिए, यह बार बार वह दर्द कहाँ मर गया रोज जो होता था, जिससे वह एकाकी भी तड़पा करता था, वह बल कविता ने पाठक से क्यों छीन लिया? यह दृष्टि सुंदरापे की कैसे बनी कि हर वह चीज जो खबर देती है हो गई गैर? क्यों कलाकार को नहीं दिखाई देती अब गंदगी, गरीबी और गुलामी से पैदा आतंक कहाँ जा छिपा भाग कर जीवन से? जो कविता की पीड़ा में अब दिख नहीं रहा, हत्यारों से क्या लेखक साझीदार हुए जो कविता हम सबको लाचार बनाती है? पृष्ठ संख्या 214। यह हिंदी में कविता की नई संस्कृति है। जिस तेजी से इसका प्रसार हो रहा है, उसी गति से कविता पाठकों के लिए अजनबी और पराई होती जा रही है। आज के हिंदी कविता के बारे में बात करते समय कवि और आलोचक उसमें अच्छी और बड़ी कविता के सारे गुण खोज लेते हैं, उसकी प्रगतिशीलता, जनवाद और क्रांतिकारिता का बखान करते नहीं थकते। लेकिन वास्तविकता यह है कि आज की अधिकांश हिंदी कविता का जनजीवन पर कोई खास प्रभाव नहीं है और उससे व्यापक समाज का कोई लगाव भी नहीं है, क्योंकि उसका स्वभाव अभिजन समुदाय की अभिरुचि के अनुकूल है, व्यापक समाज की आकांक्षा के अनुरूप नहीं। समकालीन हिंदी कविता की एक विशेषता यह है कि वह दिलचस्प एकदम नहीं है। यह गुण उसके स्वभाव से गायब हो गया है। संभव है मेरी इस बात से कुछ लोग चकित हों और पूछें कि क्या दिलचस्प होना कविता का कोई आवश्यक गुण है। उनके संतोष के लिए मैं T.S. इलियट का एक कथन दोहराना चाहूँगा, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गद्य या कविता के लिए जरूरी है कि वह दिलचस्प हो। यह पहली शर्त है, लेकिन आसान नहीं। आजकल साहित्य अधिकाधिक उबाऊ होता जा रहा है, यह उसका अपने अंत की ओर बढ़ना है। यह ठीक है कि कविता केवल दिलचस्प होने के कारण सार्थक नहीं होती, लेकिन वह उबाऊ होने पर व्यर्थ जरूर हो जाती है। तब वह पाठकों को आकर्षित नहीं करती और बहुत दिनों तक जीवित भी नहीं रह पाती। कविता एक तरह का संवाद है। एक स्तर पर वह कवि का स्वयं से संवाद होती है, जैसे कि प्रगीत में। दूसरे स्तर पर वह अन्यों से संवाद होती है, जैसे कि लंबी कविताओं में। मुक्तिबोध ठीक ही कहते हैं, कविताएं मुस्कुरा कर लाख डांट करती हैं, प्यार बात करती हैं। आजकल हिंदी की अनेक कविताएं पाठकों को मुंह चिढ़ाती हैं। वे बूझो तो जाने की चुनौती देती हुई पाठकों को बेवकूफ साबित करती लगती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब से केवल विचारों की कविता लिखी जाने लगी है, तब से वह नीरस और निर्जीव होने लगी है। यह बात एक हद तक ही सही है। कविता विचारशीलता के कारण निर्जीव और उबाऊ नहीं होती, बशर्ते कि वह विचारशीलता जीवन के अनुभवों से उपजी हो, समकालीन संवेदनाओं से जुड़ी हो और इतिहास से मुठभेड़ करती हो, जैसा कि मुक्तिबोध की कविताओं में दिखाई देता है। लेकिन जब कविता में अमूर्त और मनगढ़ंत विचार संध्या भाषा में उपस्थित होते हैं, तब वे आतंक पैदा करते हैं। आज की हिंदी कविता में विचारों का ऐसा आतंक बहुत है। आज की हिंदी कविता की एक धारा 70 के दशक की अत्यंत राजनीतिक और विचारधारात्मक कविता के विरोध में विकसित हुई है। वह हर तरह की राजनीति और विचारधारा से छुटकारा पाने की कोशिश में समकालीन सामाजिक जिंदगी की पृष्ठ संख्या 215 हलचलों से बेखबर रहती है और जनजीवन की त्रासद स्थितियों के बारे में लापरवाह। उसमें आज के भारतीय समाज की इतिहास प्रक्रिया की न कोई चेतना है न चिंता। वह या तो काल, नियति, अनंत आदि की चिंता में डूबी रहती है, या फिर कवि की व्यक्तिगत इच्छाओं के उत्सव में। जाहिर है, ऐसी कविता में केवल समान धर्माओं की दिलचस्पी हो सकती है, व्यापक समाज की नहीं। आजकल हिंदी में जिस कविता का बोलबाला है, वह नागर कविता है, शहराती और चालाक। उसके रूप और स्वभाव में ही नहीं, अभिप्राय में भी नागरता छाई हुई है। वह शहरी मध्यवर्ग के बौद्धिक समुदाय की आत्मकेंद्रित दृष्टि की उपज है। इसलिए उसमें उसी वर्ग के जीवन की वास्तविकताओं, संवेदनाओं, आकांक्षाओं और उम्मीदों की अभिव्यक्ति हो रही है। यही कारण है कि जिस समाज में जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा बेघर है, या फिर जानवरों के रहने की जगह को अपना घर मानने के लिए मजबूर है, उस समाज का एक कवि कहता है, मुझे एक घर दो कविता लिखने के लिए। इस मांग के बारे में साधारण आदमी की क्या प्रतिक्रिया होगी, उसका अनुमान कठिन नहीं है। इस नागर कविता की काव्य अनुभूति की संस्कृति में गांव का समाज, वहाँ के लोगों की जिंदगी, उस जिंदगी के संघर्ष, उस संघर्ष के अनुभव और उस अनुभव की भाषा के लिए प्रायः बहुत कम जगह होती है। अगर उसमें इन सब को कभी थोड़ी जगह मिलती भी है, तो सजावट की वस्तुओं के रूप में, ठीक वैसे ही जैसे शहरी मध्य वर्ग के लोगों के घरों में आजकल सूप, चलनी, हांडी, डलिया, टोकरी आदि का उपयोग होता है। इससे एक ओर मध्यवर्गीय जिंदगी का खोखलापन ढकता है, तो दूसरी ओर लोक जीवन और संस्कृति से प्रेम का प्रदर्शन भी होता है। इधर कुछ वर्षों से हिंदी क्षेत्र में दलित चेतना के जागरण और दलित कविता के विकास के कारण हिंदी कविता में दलित जीवन के संघर्ष और अनुभव का तेज स्वर उभर रहा है। जिन्हें नागर कविता की कानाफूसी प्रिय है, उन्हें दलित जीवन की चीखती कविता का स्वर कर्कश और विषमवादी लग रहा है, लेकिन इस स्वर के साथ लोक जीवन की पुकार हिंदी में एक बार फिर लौट रही है। इससे नागर कविता की नीरस एक स्वरता टूट रही है और हिंदी कविता में स्वरों की अनेकता आ रही है। नागर कविता की अपने रूप के बारे में अत्यधिक चिंता से लोकप्रियता और कला के बीच अलगाव पैदा हुआ है, और हिंदी कविता से लोकप्रियता के साथ सहजता, केंद्रिकता और भावावेग की विदाई हो गई है। इस प्रक्रिया में कविता से जीवंतता गायब हो गई है। कविता की अभिजनवादी दृष्टि हमेशा लोकप्रियता को कला का प्रतिद्वंद्वी और विरोधी मानकर उसे खारिज करती है। इससे आजकल एक पृष्ठ संख्या 216 और लोकप्रिय कविता कमजोर हो रही है, तो दूसरी ओर कलावादी कविता मरणोन्मुख। इतिहास गवाह है कि हिंदी कविता की परंपरा में वही कविता सजीव और आकर्षक बनी है जो लोकप्रियता का बहिष्कार नहीं परिष्कार करती हुई विकसित हुई है। इसका एक प्रमाण है भक्ति आंदोलन की कविता और दूसरा प्रगतिशील आंदोलन की कविता। कबीर जैसी सूर तुलसी तथा मीरा के काव्य की अमरता और नागार्जुन की कविता की अपार लोकप्रियता का यही कारण है कि उसमें लोकप्रियता का विकास है। कविता में लोकप्रियता केवल रूप की विशेषता नहीं है, उसके स्वभाव का गुण है। वह कविता की कल्पना से लेकर अभिव्यक्ति तक की पूरी प्रक्रिया में व्याप्त होती है। कविता की लोकप्रियता के इतिहास से यह भी साबित होता है कि वह हमेशा एक जैसी नहीं होती, उसका रूप बदलता रहता है। कबीर की कविता में लोकप्रियता का जो रूप है वही तुलसी के काव्य में नहीं, और वह नागार्जुन की कविता में जैसी है वैसी ही धूमिल की कविता में नहीं। समकालीन हिंदी कविता में कला से लोकप्रियता के अलगाव का सबसे अधिक असर कविता की बनावट पर पड़ा है। आज की अधिकतर कविताओं में समकालीन जीवन के अनुभवों और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति के बदले जीवन की स्थितियों के बारे में कवियों की वैचारिक प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, जो प्रायः बिखरी हुई होती हैं। ऐसी अधिकांश कविताओं में सुगठित संरचना नहीं मिलती और आंतरिक विकास का अभाव भी होता है। कविता की आंतरिक संरचना के निर्माण के दो मुख्य माध्यम हैं, आख्यान और बिंब। आज के अधिकांश कवियों ने इन दोनों का बहिष्कार कर दिया है। इससे कविता में संरचनात्मक एकता की जगह बिखराव की स्थितियां दिखाई देती हैं। कविता की संरचना के बिखराव का प्रभाव उसके संप्रेषण और बोध पर भी पड़ता है। आज की अनेक कविताएं व्यवस्था और गठन के अभाव के कारण अबूझ पहेली बन जाती हैं। छोटी से छोटी कविता में भी आख्यान के माध्यम से जीवन के नए से नए अनुभवों की अभिव्यक्ति हो सकती है, जैसा कि नागार्जुन और रघुवीर सहाय संभव करते हैं। जो कवि जीवन के अनुभवों और स्थितियों का आख्यान के सहारे चित्रण नहीं करते, बल्कि उनसे उत्पन्न संवेदनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति पसंद करते हैं, वे प्रायः बिंबों और प्रतीकों को माध्यम बनाते हैं। इस प्रक्रिया में कविता की जो संरचना बनती है उसमें आख्यान वाली सहजता तो नहीं होती, लेकिन ऐन्द्रियकता अधिक होती है और अर्थछटा का विस्तार भी होता है, जैसा कि केदारनाथ सिंह की कविताओं में दिखाई देता है। उनकी कविताओं के बिंब और प्रतीक काव्य अनुभूति की संस्कृति के देश और काल का पता भी बताते हैं। आज की जिन कविताओं में पृष्ठ संख्या 217 ना आख्यान का आधार है और ना बिंबधर्मिता का, वे बेरीढ़ की संरचना के कारण लुंज-पुंज होती हैं। ऐसी कविताओं की संख्या इतनी अधिक है कि उनमें से कुछ का उल्लेख करके बाकी का अपमान करना मैं नहीं चाहता। आज की नागर कविता की एक विचित्रता भाषा की वह बनावट है जो साधारण ही नहीं सुधी पाठकों की समझ को भी अंगूठा दिखाती है। कभी-कभी वाक्य का गठन इतना विचित्र होता है कि उसमें प्रत्येक शब्द का अर्थ तो समझ में आता है, लेकिन पूरा वाक्य एक पहेली लगता है। ऐसी कठिनाई का सामना हिंदी कविता के पाठकों को उस समय नहीं करना पड़ता जब वे प्रिय प्रवास और राम की शक्ति पूजा जैसी कविताएं पढ़ते हैं, क्योंकि कठिन शब्दों का अर्थ शब्दकोश की मदद से भी जाना जा सकता है, लेकिन किसी कविता के जटिल वाक्य का अर्थ कहाँ से मालूम होगा। काव्य भाषा की यह बनावट पाठकों को कविता से दूर करने के लिए बहुत दूर तक जिम्मेवार है। आज की अधिकांश नागर कविता एक गढ़ी हुई साहित्यिक हिंदी में लिखी जा रही है। वह जीवन के कर्म और अनुभव की भाषा नहीं है, यहाँ तक कि वह मध्य वर्ग के भी जीवन व्यवहार की भाषा नहीं है। इसीलिए उसकी बोलचाल की भाषा उसके मुहावरे और कथन भंगिमा से कोई आत्मीय संबंध नहीं है। यही नहीं, उसका लोक भाषाओं से संबंध भी क्रमशः कम होता जा रहा है। इस भाषा में जब कोई कवि लोक जीवन के अनुभवों को व्यक्त करना चाहता है, तब भाषा और संवेदना के बीच अंतरंगता की जगह अंतराल आ जाता है। कुछ कवियों की भाषा पर अंग्रेजी के शब्द, मुहावरे और संरचना का इतना अधिक प्रभाव है कि वह अनुवाद की भाषा लगती है। इधर कुछ समय से हिंदी के अनेक कवि जड़ों से जुड़ने के लिए चिंतित हैं। उनमें से कुछ यह समझते हैं कि जड़ों की तलाश के लिए परंपरा और स्मृति की जितनी गहरी खुदाई होगी, कविता उतनी ही अधिक जड़ों से जुड़ेगी। इस समझ के कारण हिंदी कविता की भाषा एक बार फिर संस्कृत निष्ठता की ओर बढ़ रही है। क्या संस्कृत की परंपरा से जुड़ना ही जड़ों की तलाश की एकमात्र दिशा है? क्या लोक संस्कृति और लोक भाषाओं की रचना परंपरा से जुड़ने की कोशिश जड़ों की तलाश की सही और सार्थक दिशा नहीं है? हिंदी की रचनाशीलता संस्कृत से क्रमशः स्वतंत्र होती हुई ही आगे बढ़ी है। आज भी उसकी शक्ति का सबसे आत्मीय और विश्वसनीय स्रोत लोक भाषाएं और उनकी रचना परंपरा ही है। आज के जो कवि इस सच्चाई को जानते हैं, वह लोक संस्कृत की स्मृतियों और लोक भाषा की अभिव्यक्ति के रूपों से अपनी काव्यानुभूति की संस्कृति निर्मित करते हैं। इस पृष्ठ संख्या 218 प्रक्रिया में लोक संस्कृत की परंपरा का नया संस्कार होता है और बोलचाल की भाषा की कथन भंगिमा का परिष्कार भी। इससे हिंदी भाषा के मूलभूत काव्यत्व की संभावनाओं का विकास भी होता है। अगर कवि की भाषिक संवेदनशीलता उसकी सामाजिक चेतना का द्योतक है, जो वह है, तो संस्कृत में अपनी जड़ों की खोज करने वाले कवि से लोक भाषाओं की रचनाशीलता में अपनी जड़ें फैलाने वाले कवि की सामाजिक चेतना अधिक व्यापक, समकालीन और लोकधर्मी होगी।